وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. یہ سورہ کہف کی 17ویں آیت ہے. ان نوجوانوں کا تذکرہ چل رہا تھا جس غار میں گوفا میں جا کر کے یہ نوجوان سو گئے تھے. اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نصرت اور مدد ان نوجوانوں کے ساتھ شامل حال ہوئے. اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مدد اس 17ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ تو دیکھے گا سورج کو کہ جب وہ نکلتا ہے تو ان کی گوفا سے داہنی طرف قطرہ کے نکل جاتا ہے اور جب سورج ڈوبتا ہے تو بائیں جانب میں قطرہ کے نکل جاتا ہے. اور وہ نوجوان اس گوفا میں کشادہ جگہ پر تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ جس گوفا میں سوئے ہوئے تھے روزانہ سورج نکلتا ہے اور سورج مشرق سے نکل کر کے مغرب تک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان یہ تھی کہ اس گوفا کا دروازہ یا تو اتر دشا میں تھا یا دکشن کے اندر تھا, جنوب میں تھا یا شمال میں تھا. سورج کی جو دھوپ ہے, گرمی ہے, روشنی ہے, یہ ان کی غار کے دروازے پر تو آتی تھی, لیکن جہاں یہ سات ولی, سات اولیاء اللہ, سات نوجوان سوئے تھے ان کے بدن کے اوپر ذرہ برابر بھی نہ دھوپ لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی. یہ کیسی اللہ کی کھلم کھلی مدد ہے کہ گوفا کے دروازے تک دھوپ بھی آ رہی ہے, گرمی بھی آ رہی ہے, لیکن گوفا کے اندر جہاں یہ نوجوان سوئے ہیں ان کے اوپر کوئی دھوپ بھی نہیں لگتی, گرمی بھی نہیں لگتی. اس میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ گوفا کی جو آب و ہوا تھی وہ معتدل یعنی درمیانی رہتی تھی, کیونکہ گفاؤں کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. زیادہ ٹھنڈک ہو جاوے تو بھی ان نوجوانوں کو تکلیف ہو جاوے, اور دھوپ کی گرمی زیادہ لگے تو گرمی کی وجہ سے نیند میں ڈسٹرب ہو جاوے. اس لیے اندر کی آب و ہوا, ٹیمپریچر اندر کی سائڈ کا بالکل نارمل رہتا تھا, اور نارمل رہنے کے لیے ایک طرف گوفا کی ٹھنڈک اور دوسری طرف سورج کی تھوڑی تھوڑی گرمی, دونوں کے ملنے کی وجہ سے گوفا کا ٹیمپریچر ایک دم نارمل رہتا تھا. اور یہ اللہ کے نیک بندے میٹھی نیند کے اندر مست سوئے ہوئے تھے. اب یہ عجیب و غریب جو قدرت تھی اللہ کی کہ سورج کی دھوپ اور سورج کی روشنی گوفا کے دروازے پر جاتی تھی ان کے بدن پر نہیں جاتی تھی, تو مفسرین نے ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان نوجوانوں سے دھوپ کو ہٹا دیتے تھے. اللہ کو اس بات کے اوپر قدرت ہے کہ جو دھوپ آ رہی ہے وہ دھوپ ایک جگہ پر جائے دوسری جگہ پر نہ جائے, ایک آدمی کو لگے دوسرے آدمی کو نہ لگے. तो धूप दरवाजे तक जाती है लेकिन इन नौजवानों के बदन के ऊपर न जाती। अल्लाह ताला इन धूप को कुदरती तौर पर रोक लेते थे। और बास तफसीलों में ये बात लिखी हुई है कि रोजाना अल्लाह की तरफ से एक कुदरती अजीब निज़ाम होता था कि जब धूप के आने का वक्त होता तो एक बादल आ जाता और वो बादल जहाँ इनकी गुफा है उस गुफा के दरवाजे के ऊपर वो बादल आकर के रुक जाता था। उस बादल की वजह से जो धूप आती तो धूप बादल की वजह से रुक जाती थी और गुफा के अंदर दाखिल नहीं होती थी। जितनी जगह के ऊपर गुफा का दरवाज़ा इतनी जगह पर बादल आ जाता है और उस बादल के ज़रिए से अल्लाह ताला धूप को अंदर जाने से रोक लेते थे। तो या तो कुदरती तौर पर धूप अंदर नहीं जा सकती थी या बादल के ज़रिए से अल्लाह ताला रोक लेते थे। बहरहाल इतनी बात पक्की थी कि इतना बड़ा सूरज जो रोज़ाना तुलू होवे निकले उसकी धूप उसकी सख्त गर्मी अल्लाह की इन सात वलियों को नौजवानों को पहुंचती नहीं थी। अल्लाह ताला ने इनकी अपने गैब के ख़जाने से हिफाजत फरमाई। हकीकत बात है कि जो आदमी अल्लाह की निस्बत पर उठता है खड़ा होता है अल्लाह ताला का पूरा गैबी निज़ाम उसकी मदद करता है उसकी नुसरत करता है। ये नौजवान अपनी कौम से नाराज़ होकर के चले गए थे अपने वक्त की हुकूमत से नाराज़ होकर चले गए थे। कोई दुनियावी गरज नहीं थी महज एक अल्लाह के खातिर ये उठे थे। तो अल्लाह ताला ने सूरज जैसी बड़ी मखलूक को इनकी खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया कि सूरज आ रहा है गर्मी पहुंचा रहा है लेकिन इनके बदन पर नहीं पहुंचती ताकि इनको तकलीफ़ ना हो। कैसा अजीब निज़ाम है अल्लाह ताला का। जिस गर्मी को और सूरज की धूप को हम ये समझते हैं कि ये बहुत नुकसान करती है बहुत परेशान करती है, हकीकत ये है कि इस धूप में और गर्मी में भी अल्लाह ने बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं। कहते हैं कि इस धूप के अंदर एक तो है कि विटामिन सी हमारे बदन के ऊपर जब इसकी किरणें पड़ती है तो कुदरती बदन के अंदर विटामिन्स पैदा होते हैं। और ये फलों का पकना पौधों का दरख्तों का बढ़ना कलियों का खिल करके फूल बनना और पत्तों का बढ़ना ये सब चीज़ों का दारोमदार सूरज की गर्मी और धूप पर है। तो इसके बड़े फवाइद भी है। वहुम फी फजवतिन मिन्हु। अब गार का दरवाज़ा तो छोटा सा है लेकिन अंदर जाओ तो गार बहुत कुशादा बहुत कुशादा। और ऐसी गारें हैं दुनिया में कि दरवाज़ा देखो तो एकदम छोटा सा है और अंदर चले जाओ तो इतनी बड़ी गार कि आदमी की अकल हैरान रह जावे। कुछ मुद्दत पहले वेस्ट इंडीज का सफ़र हुआ था तो वहाँ हरिसन केव कहते हैं, इंग्लिश में गार को केव कहते हैं और हरिसन किसी अंग्रेज का नाम है। तो रातों में असर के बाद मजलिसें होती थी। एक दिन सुबह में साथियों ने कहा कि चलो आज अल्लाह की कुदरत एक अजीब गार है हमारे यहाँ वो आपको दिखाने ले जाते हैं। गए तो घर का दरवाजा कितना था? ये जितना हमारी मस्जिद का ये बीच वाला दरवाजा है तकरीबन इतना होगा या इससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा। उस गार में से अंदर दाखला होता है और तीन या चार डिब्बों की ट्रेनें बनी हुई है और अंदर बाकायदा पाते हैं, बाहर से टिकट लेकर के वो ट्रेन में बिठाते हैं, खुली ट्रेन, ऊपर से छत वत नहीं होती, आगे इंजन होता है और फिर वो गार में ले गए। अब आप सोचो कि गार के अंदर ट्रेन जा रही है, तकरीबन पौने घंटे तक वो ट्रेन के अंदर वो हमको घुमाते रहे, तो सोचो कि अंदर गार कितनी बड़ी होगी और ऊपर की जानिब के अंदर पैसिफिक सी है, अटलांटिक सी, ये समंदर है ऊपर की तरफ, और नीचे चले गए तो बहुत बड़ा गार, बहुत बड़ी गुफा। पौना घंटा ट्रेन में घुमवाया और उसके बाद वहां लोग कह रहे थे कि जितना आपको ट्रेन में बिठा करके गार का हिस्सा दिखलाया उसके अलावा और भी अंदर बहुत कुछ है, बहुत बड़ी है गार का अंदर। मैंने सोचा कि अल्लाह तेरी क्या कुदरत है अजीबोगरीब, कि ऊपर से देखो तो एक छोटा सा दरवाजा और अंदर एक पूरे पूरे गांव आ जावे, इतनी बड़ी बड़ी गार अंदर कि अंदर ट्रेन चल सके। अल्लाह की अजीबोगरीब कुदरत, अंदर पानी के चश्मे, पानी के झरने बह रहे और बर्फ जैसा सफेद सफेद मादा, बर्फ नहीं है लेकिन बर्फ जैसा सफेद सब जगह जमा हुआ और अंदर लाइटें हैं, रास्ते हैं, बीच में एक जगह के ऊपर ले जा करके ऐसे ही लाइटें बंद कर देते हैं तो बिल्कुल कब्र का मंजर मालूम होता है, एकदम अंधेरा चारों तरफ से, अजीब अल्लाह की कुदरत। तो ऊपर से छोटी मालूम हो और अंदर चले जाओ तो पूरे पूरे गांव आ जाए, ऐसी वो गुफा, ये अल्लाह की अजीब व गरीब कुदरत की निशानियों में से। तो जहां ये नौजवान सोए हुए थे वो गार भी अंदर से बहुत कुशादा थी, बहुत चौड़ी अंदर से, तो जो चौड़ा हिस्सा था उस चौड़े हिस्से में ये नौजवान सोए हुए थे। वहुम फी फजवति मिन्हु, और ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत थी, इसलिए कि गार में अगर तंग जगह पर आदमी सोए तो हवा की वजह से आदमी को तंगी होती है, हब्स होता है, कि तंग जगह में आदमी सो जावे और हवा आती जाती ना हो तो आदमी को घुटन मालूम होती है, जी घबराता है, जी घुटने लगता है। लेकिन ये तो गार बहुत चौड़ी अंदर से ताकि हवा बराबर चलती रहे और अल्लाह के नेक बंदों के जी और दिल अंदर न घबरा रहे और मीठी नींद वो सोते रहे, इसलिए वो कुशादा जगह, हवा आए जाए कोई तकलीफ ना हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गैबी इंतजाम था। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत देवे वही हिदायत पाया हुआ है, जिसको अल्लाह हिदायत देवे वही हिदायत पाया हुआ है। अजीब बात बयान फरमाए, कोई इंसान अपनी जाती मेहनत से हिदायत के रास्ते के ऊपर नहीं आ सकता, अल्लाह जिसे चाहते हैं उसी को हिदायत के रास्ते के ऊपर कायम रखते हैं। इसलिए हमें अल्लाह ताला से हिदायत भी मांगनी चाहिए, जहां हम माल मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, अपने कारोबार की तरक्की मांगते हैं, वहां अल्लाह ताला से हिदायत भी मांगो, ये भी मांगने की चीज है। और एक छोटी सी दुआ आई है बस आसार के अंदर, बहुत छोटी दुआ लेकिन बहुत जामे और बहुत काम की दुआ, अल्लाहुम्मा हदीना वहदी दीना, अल्लाहुम्मा हदीना वहदी दीना, कितनी छोटी दुआ है, अल्लाहुम्मा हदीना वहदी दीना, ए अल्लाह तो हमको हिदायत अता फरमा और हमारे जरिए से दूसरों को हिदायत अता फरमा, कैसी जबरदस्त दुआ, अल्लाहुम्मा हदीना वहदी दीना, ए अल्लाह हमको भी हिदायत अता फरमा। और हमारे जरिए से दूसरों को हिदायत अता फरमा। इसलिए हिदायत हमें अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وے آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار راہ بتلانے والا۔ اللہ ہی طے کر لے وے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح راستہ نہیں بتلا سکتی۔ بڑے سے بڑا رہبر بڑے سے بڑا مرشد بھی اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ جس کے لیے اللہ کے یہاں گمراہی کا فیصلہ ہو جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت سیدھے راستے پر نہیں لا سکتی۔ اس لیے دعا یہ کرتے رہو کہ اللہ تو ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لینا، تو ہمیں بھٹکنے سے بچا لینا، اور تو ہمیں غلط راستے سے محفوظ رکھنا۔ یہ دعا بھی اللہ سے خوب مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم بہت سی مرتبہ ہمارے سماج میں دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، کبھی وہ ضد پہ اڑ جاتا ہے کسی بات میں، اب اس کو ایک کے بعد ایک لوگ سمجھانے جا رہے ہیں، بھائی سمجھا رہا ہے، باپ سمجھا رہا ہے، امام صاحب سمجھا رہے ہیں، مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں، مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں، عالم صاحب سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کی دل میں بات اترتی نہیں ہے۔ بہت سمجھا چکے لیکن دل میں بات اترتی نہیں، یہ کون سی چیز ہے کہ سارے لوگ اس کو سمجھا رہے ہیں پھر بھی دل میں بات اترتی نہیں؟ یہ حقیقت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے یہاں طے ہو چکا کہ اس کو گمراہی کے راستے پر ڈالنا ہے، تو پھر کوئی دنیا کا کوئی آدمی اس کو سمجھا سکتا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں گمراہ مت کر دینا، تو ہمیں راستے سے بھٹکا مت دینا، تو ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنا۔ اس لیے پہلے ایک مجلس میں آپ کو ایک دعا بتلائی تھی گمراہی سے حفاظت کے واسطے، وہ دعا بھی ہمیں خاص طور پر مانگتے رہنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، تو ایک مرتبہ ہمیں ہدایت دے چکا، اس کے بعد تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے راستے سے گرا مت دینا، ہٹا مت دینا۔ یہ دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ دعا، دو دعا یاد کر لو اور اس کو مانگنے کا اہتمام کرو۔ اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھاؤ، اللہم اہدنا واہد بنا، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے ذریعے سے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ اور یہ دعا بھی بہت اہم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد۔ اور مزید تین نعمتیں، دیکھو عجیب رشک کی چیز ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے اللہ اس کی کیسی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک تو سورج ان کی خدمت کر رہا ہے اب آگے والی آیت میں، اور آپ ان کو خیال کریں گے کہ وہ بیدار ہے حالانکہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سوئے ہوئے بیدار ہیں حالانکہ وہ سب سوئے ہوئے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ سوئے رہے 309 برس تک تو ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، آنکھ بند نہیں ہوئی۔ کوئی بھی آدمی گفا میں آتا تو ان کی طرف دیکھتا کہ بھئی یہ تو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایسے ابھی پڑے ہوئے ہیں، جاگتے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے کوئی ان پر اٹیک کرنے کی، حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اگر پتہ چل جائے کہ بھئی یہ سوئے ہوئے ہیں तो चोर भी हमला कर देवे, डाकू भी हमला कर देवे, गुंडा भी हमला कर देवे, लेकिन आंख खुली हुई और सो रहे। अजीब अल्लाह की नेमत देखिए कि सो रहे लेकिन आंख खुली हुई है। इसीलिए कोई चोर कोई डाकू उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत करता नहीं था, और कोई उनका सामान भी ले जाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए कि आदमी सामान रख के सो जाए तो कोई चोरी कर जाए, लेकिन ये तो आंखें खुली हुई है इसलिए कोई सामान उठाने की भी हिम्मत नहीं करता। और मजीद लिखा है तफसीर की किताबों में कि जैसे आदमी जब सो जाता है तो सांस फूलने लगती है, खर्राटे निकलते हैं, सांस फूलती है। अल्लाह की शान ये थी कि ये नौजवान 309 बरस सोए लेकिन न तो सांस फूली, न तो खर्राटे निकले और न तो उनका बदन ढीला हुआ। जब आदमी सो जाता है तो बदन ढीला हो जाता है, और बदन ढीला होता है तो हवा भी निकलती है, कभी पेशाब के कतरे भी निकल जाते हैं, कभी और गंदे कतरे भी निकल जाते हैं, आदमी को पता नहीं चलता कि कैसे हवा निकल गई। इसलिए आदमी जब सो जाता है, नींद लग जाती है, तो नींद का आ जाना वुजू को तोड़ देता है, वुजू टूट जाता है उससे। इसलिए कि जब आदमी सो गया तो हवा निकली क्या निकला कुछ पता नहीं चलता, बदन ढीला हो जाता है। लेकिन ये नौजवान अल्लाह के वली जो सोए 309 बरस तक, तो उनका बदन ढीला नहीं हुआ, बदन चुस्त रहा, फिट रहा। और नेमत وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, और हम उनको पलटते थे, कभी दाहिनी करवट कभी बाईं करवट। अल्लाह फरमाते وَنُقَلِّبُهُمْ, अल्लाह पलट रहे हैं, अल्लाह पलट रहे हैं, कभी दाहिनी तरफ कभी बाईं तरफ। देखो हम लोग एक रात, सिर्फ एक रात एक करवट पर सोए रह गए तो सुबह में आदमी को हाथ दर्द करने लगता है, भाई बहुत दर्द हो रहा है। क्यों? पूरी रात एक साइड आज सोया रहा तो ये पूरा दर्द होता हो गया। तो 309 बरस अगर एक साइड पर सोए रहते तो क्या होता? ये सब खत्म हो जाता, लकवा पड़ जाता, फालिज हो जाता। और हो सकता था कि जमीन उनकी एक बाजू को, एक साइड को जमीन खा जाती। इसलिए कि जमीन किसी चीज को रहने नहीं देती है, कोई भी चीज जमीन पे डाल दो तो पड़े 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 सड़ते सड़ते वो चीज खत्म हो जाती है। लोहा भी डाल दो जमीन पर, देखो 8-10 साल में लोहे का क्या हाल होता है। लकड़ा डाल दो जमीन पर तो जमीन लकड़े को भी धीरे 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 खा जाती है। तो ये तो इंसान का बदन था, और वो भी एक दो रात नहीं, 309 साल का मसला है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके बदन को जमीन ना खा जावे, उनके एक जानिब में थकन ना आ जावे, इसीलिए हम उनके पहलू को, करवट को पलटते थे, कभी इस करवट पर कभी इस करवट पर, कभी दाई साइड कभी बाई साइड, हम उनको पलट रहे हैं, अल्लाह पलट रहे हैं इनको। दुनिया में कोई आदमी ज़ईफ़ हो जाए, बीमार हो जाए, तो उनकी औलाद उनकी खिदमत करती है, अब्बा को उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, इस्तिंजा करा रहे हैं, वुजू करा रहे हैं, नमाज़ पढ़ा रहे हैं, खिला रहे हैं। वो आदमी बिस्तर पर पड़े पड़े कितना खुश होता है कि मेरा बेटा कितना अच्छा, मेरी बीवी कितनी अच्छी, क्या आज माजूरी के ज़माने के अंदर वो मेरी खिदमत कर रहे हैं। तो जब दुनिया का एक इंसान चंद सालों चंद महीने एक बीमार की खिदमत करे तो वो बीमार दिल से उसका एहसान मानता है, उसके लिए दुआएं करता है। यहाँ तो 309 बरस तक अल्लाह ताला ने इन सात नौजवानों को कभी इधर पलटा कभी इधर पलटा, कभी इधर सुलाया कभी इधर सुलाया। कितना बड़ा मेहरबान खुदा है। हमारे घरों को अल्लाह ताला आफियत से रखे। जिन घरों में कोई बीमार होता है उन घर वालों को पूछो कि अगर कोई बूढ़ा आदमी, चाहे अब्बा ही क्यों ना हो, चंद साल बीमार हो जाए और रात दिन उनको पेशाब पाखाना करवाना पड़ता हो, नहलाना पड़ता हो, तो हम लोग क्या कहते हैं? भाई मुफ्ती साहब दुआ करो कि अल्लाह अब उनको जल्दी ले ले रहे। दुआ करवाते लोग बाकायदा, और खुद भी दुआ करते कि भाई बहुत हो गए, खिदमत करते करते इतने साल हो गए, अब तो पूरे घर वाले परेशान हैं इनकी खिदमत करते करते, कि दुआ करो कि अल्लाह इनको अब जल्दी उठा ले रहे। भाई दो चार पाँच दस साल के अंदर घर वाले थक जाते हैं और दुआ करते करवाते हैं, तो यहाँ तो 309 बरस अल्लाह ताला उनके लिए सहूलत का सामान फरमा रहे और अल्लाह आज तक थके नहीं कि तुम मेरे दीन के लिए चले, तो अल्लाह ताला जो है उनके लिए राहत फरमा रहे 309 बरस। कभी ये करवट कभी ये करवट, अल्लाह उनको पलट रहे। और आगे وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا چوکھٹ کے اوپر اپنے دونوں آگے والے پیر کو پھیلا کر کے بیٹھا ہوا تھا, کتا اپنے دونوں آگے والے پیر کو ان کی چوکھٹ کے اوپر پھیلا کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے کتے کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ किसी की चौकी करता है, हिफाजत करता है, तो दोनों पैर को आगे रख देता है और सामने की तरफ मुंह कर देता है, एकदम दौड़ने की एक्शन में कि सामने से कोई चोर आवे लुटेरा आवे तो फट से दौड़ पड़े उसकी तरफ। तो जब वो सिक्योरिटी की एक्शन में होता है, हिफाजत के लिए तैयार होता है, तो आगे अपने दोनों पैर को बिछा देता है, मुंह आगे रख देता है और एकदम तैयार मुस्तैद चौकन्ना होकर के कुत्ता रात गुजारता है। इन नौजवानों का एक कुत्ता था, वो कुत्ता भी उनके साथ आया, और ये जो कुत्ता था ये गुफा के दरवाजे पर आगे अपने दो पैर निकाल करके जैसे हिफाजत के लिए चौकी के लिए सिक्योरिटी के लिए कुत्ता बैठता है, इस तरह एकदम चौकन्ना होकर के कुत्ता बैठा हुआ है। और 309 बरस कुत्ता वहां बैठा रहा। हालांकि कुत्ते की तबीयत हम जानते हैं, एक घंटा यहाँ एक घंटा दूसरे महल्ले में फिर तीसरे महल्ले में घश करता फिरता है सब जगह के ऊपर, चैन नहीं पड़ता उसकी तबीयत को। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से मामला था कि 309 बरस तक वो कुत्ता पूरी एकदम एक्टिव होकर के इन नौजवानों की खिदमत के लिए लगा हुआ है। कैसी अल्लाह ए पाक की शान। अब यहाँ एक मसला भी समझ लो, तो मसला यह है कि हदीस पाक में आता है कि जिन घरों में तस्वीर होती है, जिन घरों में कुत्ता होता है, उन घरों में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते नहीं हैं। जहाँ तस्वीर हो, जहाँ कुत्ता हो, वहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते नहीं। तस्वीर का मतलब क्या है? जानवरों की तस्वीर, इंसानों की तस्वीर। बाकी यह है कि कोई कुदरती सीनरी है जिसमें कोई इंसान नहीं कोई जानवर नहीं, वो आप रख सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। बाकी जानवर की तस्वीर और इंसान की तस्वीर घर में रखना हराम है, गुनाह कबीरा में शामिल है। और उन घरों के अंदर अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते नहीं। लेकिन हदीस पाक से मालूम होता है कि तीन काम के लिए कुत्ता पालना जायज है, तीन कामों के लिए। नंबर एक, शिकार के लिए, कुत्ता शिकार के लिए पालते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर वो कुत्ता शिकार करके लाता है, उसके बड़े मसाइल हैं। बहरहाल शिकार के लिए ट्रेनिंग दे करके कुत्ता पालना जायज है। नंबर दो, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, खेती की हिफाजत के लिए भी खेतियों में कुत्ता पालना जायज है। और नंबर तीन, किसी के यहाँ जानवर बहुत हो, बकरियाँ ऊंट बहुत जानवर हो, तो जानवरों की हिफाजत के लिए भी कुत्ता पालना जायज है। तो इन तीन मकसद के लिए कुत्ते को पालना जायज है। उसके अलावा और किसी मकसद के लिए, खाली शौक पूरा करने के लिए कुत्ते को पालना जायज़ नहीं है। आज तो दुनिया अब इतनी आगे बढ़ गई कि लोग कुत्ते को पालते तो पालते हैं, उसके नाम के ऊपर विल नामा भी करते हैं, वसीयत नामा, विल नामा, कि हमारी प्रॉपर्टी में से हमारे मरने के बाद हमारे कुत्ते का इतना हिस्सा, विल नामे भी करते हैं। और जहां दुनिया में सैकड़ों इंसान भूखे मर रहे हैं और वहां कुत्तों के लिए एक से एक खाने की चीजें, बेहतरीन बेडरूम, सिटिंग रूम, पता नहीं कैसे कैसे इंतजाम होते हैं, और उनको एयर कंडीशन गाड़ियों में घुमाया जाता है, और स्पेशल उसके लिए साबू होते हैं, उसकी दवाएं होती है, उसके डॉक्टर होते हैं, पता नहीं क्या क्या खिदमतें की जाती होती है। तो ये तीन मकसद के लिए तो कुत्ता पालना जायज, उसके अलावा कुत्ता पालना जायज नहीं। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ये नौजवान, जैसा कि आपको शुरू किस्से में बताया गया था कि बड़े ऊंचे घराने के थे, मालदारों के घर के थे, खेती वाले थे, इसीलिए उनमें से किसी ने अपनी खेती के लिए जो कुत्ता पाला होगा वो कुत्ता उनके साथ साथ आ गया है, और वो कुत्ता भी 309 साल तक इन नौजवानों के साथ बैठा रहा। अब एक काम की बात भी सुन लो, साबित है ये बात कि कल कयामत के दिन जब ये नौजवान जन्नत में जाएंगे तो इनके साथ साथ उनका कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। हालांकि जन्नत जानवरों के लिए नहीं है, दोजख भी जानवरों के लिए नहीं है। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला जानवरों को पैदा करेंगे, हिसाब किताब होगा, कि सिंह वाली बकरी ने बगैर सिंह की बकरी को मारा तो हिसाब अल्लाह करवाएंगे, और किसी बड़े जानवर ने छोटे जानवर पर जुल्म किया, हिसाब किताब होगा उनका भी। लेकिन जब बदला हो जाएगा तो बदले के बाद अल्लाह ताला तमाम जानवरों को मिट्टी में मिला देंगे, खत्म कर देंगे। जानवरों के लिए जन्नत भी नहीं, जहन्नम भी नहीं। लेकिन इन सात नौजवानों का कुत्ता जिसने अल्लाह के वलियों की सोहबत उठाई, उनके साथ रहा, उनकी खिदमत में रहा, इस कुत्ते को अल्लाह ताला इंसान की शक्ल में जन्नत में भेजेंगे। अब यहां एक सोचने का मकाम है, बड़ी ऊंची सोचने की बात, कि जब एक कुत्ते जैसा जानवर अल्लाह के वलियों के साथ रहे, अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहे, तो अल्लाह उसको जन्नत अता फरमा देते हैं, तो क्या ख्याल है कि ये इंसान अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहे तो अल्लाह ताला उसको कितना ऊंचा मकाम अता फरमाएंगे। इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ अपना उठना बैठना रखे, उनकी सोहबत में हम रहे, उनके साथ हमारा ताल्लुक रहे, ये बहुत जरूरी है। अल्लामा इकबाल फरमा गए ने, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, न पूछ इन खिर का पोशों की हो इरादत तो देख इनको, न पूछ इन खिर का पोशों की हो इरादत तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। के ये जो ऊपर से सीधे साधे नजर आते हैं, इनको अल्लाह ने क्या मकाम दिया, इसका ये तो इनकी सोहबत में रहने के बाद ही पता चलेगा। मुर्दा दिल, मरे हुए दिल, मुरझाए हुए दिल अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहने की वजह से जिंदा हो जाते हैं। दिल के अंदर ईमान की रोशनी जलने लगती है, दिल में ईमान का चिराग जलने लगता है, दिल में ईमान का नूर चमकने लगता है नेक बंदों के साथ रहने की बरकत से। जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शम्मे कुश्ता को मौजे नफस इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। टूटी हुई मोमबत्ती जो फेंक देने के काबिल होती है, वो भी जब अल्लाह के नेक बंदों के दिलों के सामने आती है तो वो भी जल उठती है। मुराद है टूटा हुआ दिल, गंदा दिल, सड़ा हुआ दिल जब अल्लाह के नेक बंदों की सोहबत में जाते हैं तो ऐसे दिल को भी अल्लाह ताला नूरानी दिल बना देते हैं। इसलिए जब एक कुत्ते जैसा जानवर नेक लोगों के साथ रह कर के जन्नती बन गया, तो अगर हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहेंगे तो अल्लाह हमें भी इंशाल्लाह जन्नती बना देंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने के अंदर हम अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहें। हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के दरवाजे पर थे, बिल्कुल दरवाजे पर। इतने में एक आदमी आए और उन्होंने पूछा कि हुजूर कयामत कब आएगी, कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा जवाब दिया कि भाई तूने कयामत के लिए तैयारी क्या की है, कयामत के लिए पूछ तो रहे हो कब आएगी, लेकिन कयामत के लिए तुमने तैयारी क्या की है? तो आदमी जवाब में कहता है कि हुजूर मेरे पास कोई बहुत रोज़े नमाज सदका खैरात तो मैंने जमा नहीं किए हैं, कि बहुत नमाजें पढ़ी हो, बहुत रोज़े रखे हो, बहुत सदका किया हो, ऐसा तो कोई काम मैंने किया नहीं, लेकिन मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसी ही बात है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखते हो तो याद रखो तुम जिससे मोहब्बत रखते हो उसके साथ तुम जन्नत में रहोगे, जिसके साथ तुम्हारी मोहब्बत तुम उसके साथ रहोगे। लिहाजा अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, तो इंशाअल्लाह उनके साथ जन्नत का दाखिला होगा। अगर अल्लाह के नेक बंदों के साथ, अल्लाह के वलियों के साथ, सालिहीन के साथ हम मोहब्बत रखेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके साथ हमें जन्नत का दाखिला अता फरमाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के खादिम, सच्चे खादिम, वो फरमाते हैं कि जब ये बात हमने हुजूर की ज़ुबान मुबारक से सुनी तो हम बहुत खुश हुए, ऐसे खुश हुए कि ईमान लाने के बाद किसी बात से इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी आज हमें इस बात से हुई। इस बात से कि आदमी जिसके साथ मोहब्बत रखता है उसके साथ अल्लाह उसको रखेंगे। और फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं अल्लाह पाक की कसम मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, हजरत अबू बकर से मोहब्बत है, हजरत उमर फारूक से मोहब्बत है, और मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे उनके साथ आखिरत में रखेंगे। तो जिससे मोहब्बत अल्लाह उनके साथ हमें आखिरत में रखेंगे, इसलिए नेक लोगों से मोहब्बत रखो। तो देखो एक कुत्ता जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहा तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत अता फरमा दी। अगर आप उनको झांके उनकी गार में तो उनसे पीठ फिरा करके भागेंगे और उनकी वजह से रौब आ जाएगा। अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को जहां सुलाया था एक अजीब रौब वाला मंजर अता फरमाया था, तो कोई आदमी अगर देखने जावे तो भागे वहां से और रौब से उसका दिल भर जावे। ये गैबी मंजर इसलिए था रौब वाला ताकि कोई उनको छेड़े नहीं, कोई उनको परेशान न करे, इसलिए अल्लाह ताला ने एक रौब वाला मंजर उनको अता फरमाया था। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा हुजूर के चचाजाद भाई, वो फरमाते हैं कि मैं हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रूमियों के मुकाबले में एक गजवे के सफर में गया। तो हम एक जगह से गुजरे तो लोगों ने बताया कि यहाँ वो गार है जिसमें ये नौजवान सोए हुए हैं, ये गार यहीं पर है। तो हजरत अमीर माविया कहने लगे कि भाई ज़ियारत करनी चाहिए अगर वो नौजवान इसी गार में सोए हुए हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा कि हजरत जो आपसे बड़े थे उनको अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि लवित्तलात अलैहिम लवल्लैत मिन्हुम फिरारा, आपसे बड़े यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप कैसे देख पाएंगे? इसलिए उनको देखने जाना मुनासिब नहीं। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला उन्होंने ये मशवरा नहीं माना। उन्होंने आयत का मतलब ये लिया, शायद ये निकल सकता है कि हुजूर के अलावा पूरी उम्मत मुराद है, कि अगर हुजूर देखने जाएंगे तो हुजूर घबरा के भागेंगे नहीं, बाकी और कोई देखने जाएगा तो घबरा करके भाग जाएगा। चुनांचे हजरत अमीर माविया ने चंद आदमियों को भेजा कि जाओ जाके देखो वो गार में जो नौजवान कैसे सोए हैं, उनकी लाशों का क्या हाल है, जा करके देखो। तो नौजवान वो कुछ आदमी गए देखने के लिए, तो जब देखने के लिए गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से गरम गरम ऐसी तेज हवा चली कि जो हजरात देखने गए थे उनको वहां से पीठ फिरा करके भागना पड़ा, और वो देख नहीं सके कि अंदर गार के अंदर उन नौजवानों की लाशों का अब क्या हाल है, वो नहीं देख सके। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कैसा हिफाजत का इंतजाम किया कि सूरज इनकी खिदमत कर रहा है, कुत्ता उनकी खिदमत कर रहा है, और ये नौजवान सोए हुए हैं। 309 साल तक सोए रहे, उसके बाद वो बेदार हुए।